एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान।
और मैं आपकी सह मेजबान।
आज हम एलेक्सिस एल बोयलान के काम और खास तौर पर दृश्य संस्कृति मतलब विजुअल कल्चर की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं।
हाँ, हमारे पास इस विषय पर कुछ दिलचस्प लेख और नोट्स हैं।
बिल्कुल, और आज हमारा मकसद है कि इनमें से जो सबसे जरूरी और कह सकते हैं दिलचस्प विचार हैं, उन्हें सामने लाएं
और ये समझने की कोशिश करें कि बोयलान के नजरिए से ये जो हमारे चारों तरफ छवियां बिखरी पड़ी हैं,
हाँ, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, विज्ञापनों में, खबरों में,
ये सब हमारी सोच, हमारे समाज और यहाँ तक कि सत्ता के समीकरणों पर कैसे असर डालती हैं, इस पर बात करना जरूरी है।
और ये समझना आज के जमाने में कितना कितना अहम हो गया है ना।
बिल्कुल, हम सचमुच तस्वीरों और वीडियो के एक समंदर में जी रहे हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, स्क्रीन पर, सड़कों पर, हर जगह छवियां ही छवियां।
सही कहा।
और बोयलान का काम, जैसा कि इन स्रोतों से पता चलता है, हमें इन छवियों को सिर्फ देखने के बजाय उन्हें पढ़ना सिखाता है, उनके पीछे छिपे संदेशों को समझना।
हाँ, एक तरह से दृश्य साक्षरता या विजुअल लिटरेसी हासिल करने की तरफ ले जाता है।
बिल्कुल, इसका असल मकसद शायद यही है, ये जानना कि छवियां क्या करती हैं, वो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे बनाती हैं।
बहुत बढ़िया, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एलेक्सिस बोयलान के काम से जुड़े इन स्रोतों में हमारे लिए क्या खास है।
जरूर, सबसे पहले लेखिका के बारे में थोड़ी बात हो जाए। एलेक्सिस एल बोयलान।
हाँ, बताइए इन स्रोतों से क्या पता चलता है उनके बारे में।
देखिए, उपलब्ध जानकारी बताती है कि वो एक जानी मानी अमेरिकी कला इतिहासकार और अकेडमिक है। कनेक्टिकट विश्वविद्यालय में ह्यूमैनिटीज इंस्टीट्यूट से जुड़ी हैं।
अच्छा,
और कला इतिहास के साथ साथ अफ्रिकाना स्टडीज की प्रोफेसर भी हैं। उनकी पीएचडी कला इतिहास में है।
हाँ, और जो बात उन्हें इस विषय पर लिखने के लिए खास बनाती है वो है उनका दायरा।
वो सिर्फ पारंपरिक कला तक ही सीमित नहीं रहती।
सही का मतलब वो सिर्फ पेंटिंग मूर्ति तक ही नहीं देखती।
नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो नोट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि वो कला इतिहास को सांस्कृतिक अध्ययन से जोड़ती हैं।
मीडिया विश्लेषण और हाँ, विज्ञान और तकनीक के सवालों से भी।
हाँ, एकदम अंतः विषय मतलब इंटरडिसिप्लिनरी नजरिया है उनका।
वो इस पर बहुत ध्यान देती हैं कि कैसे मतलब अलग अलग तरह की छवियां,
चाहे वो ऊंची कला हो या फिर बिल्कुल रोजमर्रा की चीजें,
वो समाज में जाति, लिंग, पहचान, इन सब मुद्दों को आकार देने में क्या भूमिका निभाती हैं, ये समझना जरूरी है।
और एक दिलचस्प बात ये भी है कि वो दृश्य संस्कृति को कोई ठहरी हुई परिभाषित चीज नहीं मानती।
अच्छा, तो फिर क्या मानती हैं?
वो इसे एक लगातार बदलते डायनामिक क्षेत्र की तरह देखती हैं, जिसमें अंदरूनी बहसें और असहमतियां हैं। वो मानती हैं कि ये संघर्ष ही इस क्षेत्र की, क्या कहते हैं, जान है।
ये तो काफी अलग नजरिया है, मतलब स्थिरता में नहीं बल्कि बहस और बदलाव में इसकी ताकत है।
बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि छवियों की दुनिया स्थिर नहीं है, ये लगातार बन और बदल रही है।
तो अब आते हैं बोयलान के काम के मूल उद्देश्य पर, जैसा कि इन स्रोतों से जाहिर होता है। ये कोई कैसे करे गाइड नहीं है कि तस्वीरों का मतलब कैसे निकालें?
नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका लक्ष्य कहीं ज्यादा गहरा है।
हाँ, ये हमें वो औजार, वो सोचने का ढांचा और वो आलोचनात्मक नजरिया देना चाहता है जिससे हम आज की इस छवियों से भरी दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकें
और उससे जुड़ सकें। सही कहा, इसका आधार यही है कि दृश्य संस्कृति म्यूजियम की दीवारों तक सीमित नहीं है।
हाँ, इसमें तो सब कुछ आ गया फिर, फोन का इंटरफेस, इंस्टाग्राम फीड, विज्ञापन,
शहरों का नक्शा, यहाँ तक कि वैज्ञानिक डेटा को दिखाने वाले ग्राफ, सब कुछ। ये सिर्फ चीजों का ढेर नहीं बल्कि एक सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया है।
एक ऐसा मैदान जहाँ लगातार विचारों का, नजरियों का और यहाँ तक कि सत्ता का भी संघर्ष चलता रहता है।
इसीलिए इसे समझना जरूरी है।
और ये सिर्फ अकादमिक लोगों या छात्रों के लिए ही नहीं है, है ना?
नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो ये समझना चाहता है कि उसके आसपास की दुनिया कैसे काम करती है
और कैसे छवियां हमारी सोच और व्यवहार को शायद अनजाने में भी प्रभावित कर रही हैं।
बिल्कुल, लक्ष्य है एक ज्यादा जागरूक, ज्यादा आलोचनात्मक दर्शक या पाठक बनना।
इन स्रोतों में बोयलान के काम को समझने के लिए कुछ मुख्य अवधारणाओं या कह सकते हैं संघर्ष के क्षेत्रों का जिक्र है।
हाँ, ऐसा लगता है कि बोविलान हमें इन्हीं के जरिए दृश्य संस्कृति की जटिल दुनिया में ले जाती हैं।
कौन कौन से हैं वो?
वो है दृष्टि, विजन, दृश्य, द विजुअल, वस्तु, द ऑब्जेक्ट, सामाजिक, द सोशल और पुरालेख, द आर्काइव।
अच्छा, तो चलिए इन्हीं के सहारे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी समझ को कैसे बढ़ाते हैं।
ठीक है, तो शुरुआत दृष्टि से करते हैं।
हाँ, तो इसमें क्या खास बात है? नोट्स क्या कहते हैं?
एक बात जो उभर कर आती है वो ये है कि बोयान देखने की शारीरिक क्षमता, मतलब आँखों से देखना,
हाँ,
और देखने के तरीके यानी सांस्कृतिक रूप से हमें कैसे देखना सिखाया जाता है, इसके बीच फर्क करती हैं, जिसे वो स्कोपिक रेजिम कहती हैं।
अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। मतलब हम सब एक ही चीज को देख रहे होते हैं, लेकिन शायद उसे समझ अलग अलग तरीकों से रहे होते हैं।
बिल्कुल, क्योंकि हमें समाज ने वैसा देखना सिखाया है, जैसे शायद हमारे दादा दादी किसी विज्ञापन को जिस नज़र से देखते थे, हम उसे बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं।
हाँ, ये पीरियड आई वाली बात शायद इसी से जुड़ती है कि हर दौर का अपना देखने का तरीका होता है।
बिल्कुल, और इसमें तकनीक की भूमिका भी बहुत बड़ी है, कैमरा, माइक्रोस्कोप और अब तो एल्गोरिदम्स भी।
सही बात है।
इन सब ने न सिर्फ हमारे देखने की क्षमता बदली है, बल्कि ये भी तय किया है कि क्या देखा जाना जरूरी है और उस देखे हुए का क्या मतलब निकाला जाए।
ये तो ज्ञान और शक्ति से जुड़ा मामला हो गया। फिर ये दिखाता है कि देखने का कार्य कितना जटिल है।
हाँ, अगर देखना सीखा जाता है और तकनीक उसे बदलती है, विजन, तो फिर सवाल उठता है कि हम किन चीजों को देखने लायक या दृश्य, द विजुअल मानते हैं।
हाँ, ये दूसरा अहम बिंदु है जो स्रोतों में मिलता है।
और यहाँ बोयलान कला इतिहास की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ती हैं।
कैसे?
दृश्य सिर्फ पेंटिंग या मूर्ति नहीं है, इसमें वैज्ञानिक डेटा के ग्राफ, मौसम के नक्शे, आर्किटेक्चर के प्लान,
हमारे ऐप्स की डिजाइन, सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ शामिल है।
हाँ, यहाँ तक कि वो चीजें भी जिन्हें हम सीधे देख नहीं सकते, जैसे कोई वायरस, लेकिन तकनीक उसे हमारे लिए दृश्य बना देती है।
तो इसका मतलब है कि दृश्य का दायरा बहुत बहुत बड़ा है और ये सिर्फ सुंदरता या कला का मामला नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये ज्ञान कैसे बनता है, समाज कैसे चलता है, नियंत्रण कैसे होते हैं, इन सब प्रक्रियाओं से जुड़ा है।
जैसे एक ब्रेन स्कैन की छवि, वो सिर्फ मेडिकल जानकारी नहीं देती है ना?
नहीं, वो मानव शरीर और दिमाग को समझने का एक खास तरीका भी पेश करती है, ये छवियों की भूमिका को उजागर करता है।
अच्छा, इसके बाद आता है वस्तु, द ऑब्जेक्ट का विचार। जो नोट्स हमारे पास हैं उनमें इस पर जोर है कि किसी भी दृश्य वस्तु का अर्थ, वो मतलब, स्थिर नहीं होता।
हाँ, वो संदर्भ के साथ बदलता है। एक ही तस्वीर किसी म्यूजियम में कला का नमूना हो सकती है,
किसी के घर में याद,
और पुलिस के लिए सबूत।
हाँ, यहाँ वाल्टर बेंजामिन की ऑरा वाली बात भी शायद प्रासंगिक है कि मूल चीज की एक खासियत होती है जो कॉपी में नहीं होती।
हाँ, शायद, लेकिन बोयलान शायद ये भी कह रही है कि तकनीक जैसे फोटोग्राफी ने छवियों को कैसे बदला है, शायद ऑरा कम हुई पर पहुंच बहुत बढ़ गई।
हाँ, और वस्तुओं का अपना सामाजिक जीवन होता है, जैसे जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उनके मायने बदलते जाते हैं।
इसका एक बेहद शक्तिशाली उदाहरण ज़ीली डैग्रोटाइप्स का दिया गया है।
हाँ, वो 19वीं सदी में अमेरिका में गुलाम बनाए गए लोगों की तस्वीरें थीं,
जिन्हें नस्लभेदी विचारों को सही ठहराने के लिए खींचा गया था। सोचिए जरा,
कितनी भयानक बात है। लेकिन आज तो उन्हें बिल्कुल अलग नजरिए से देखा जाता होगा।
बिल्कुल, आज उन्हीं तस्वीरों को उन व्यक्तियों के गहरे दुख, उनकी इंसानियत और उस समय की क्रूरता के दस्तावेज के रूप में देखा जाता है।
ये दिखाता है कि अर्थ कितना बदल सकता है, कितना विवादित हो सकता है। वस्तु वही है, पर उसका सामाजिक कार्य और हमारी समझ बदल गई है।
ये वस्तु की भूमिका पर ही सवाल उठाता है।
इसी से जुड़ा अगला बिंदु है सामाजिक, द सोशल।
हाँ, ये विचार कि छवियां सिर्फ समाज को दिखाती नहीं बल्कि उसे बनाती भी हैं, वो सामाजिक कार्य करती हैं, ये बात स्रोतों में बार बार आती है।
इसका क्या मतलब हुआ? मतलब छवियां समाज पर असर डालती हैं? थोड़ा और समझाएंगी?
हाँ, और बहुत गहरे स्तर पर। सोचिए देखने की राजनीति के बारे में, कैसे देखना एक तरह से शक्ति का प्रदर्शन हो सकता है, किसी को वस्तु की तरह देखना, ऑब्जेक्टिफिकेशन,
या निगरानी रखना।
बिल्कुल, जैसे पुरुष दृष्टि, मेल गेज की बात होती है सिनेमा में, या कैसे औपनिवेशिक काल में तस्वीरों का इस्तेमाल दूसरों को कमतर दिखाने के लिए किया गया।
औपनिवेशिक दृष्टि, कॉलोनियल गेज।
हाँ, ये सब देखने के सामाजिक और राजनीतिक पहलू हैं।
अच्छा, लेकिन क्या इसका उल्टा भी सच है? क्या देखना प्रतिरोध का जरिया भी बन सकता है?
जरूर, नागरिक अधिकार आंदोलन की तस्वीरें, विरोध प्रदर्शनों के पोस्टर्स
या आजकल ऑनलाइन समुदाय बनाने वाली मीम्स और छवियां,
हाँ, ये सब दिखाते हैं कि दृश्य माध्यम का इस्तेमाल सत्ता को चुनौती देने और बदलाव लाने के लिए भी हो सकता है।
इसका एक बहुत ही परेशान करने वाला उदाहरण अबू गरीब की तस्वीरें हैं।
हाँ, वो इराक युद्ध वाली तस्वीरें, बहुत विवाद हुआ था।
बिल्कुल, वो तस्वीरें निजी कैमरों से ली गई थी, लेकिन जब सामने आईं तो उन्होंने सरकारी हिंसा का पर्दाफाश किया और पूरी दुनिया में हंगामा मच गया।
ये दिखाता है कि कैसे साधारण सी दिखने वाली छवियां भी कितना बड़ा सामाजिक कार्य कर सकती हैं, कितना शक्तिशाली संदेश दे सकती हैं।
और आखिरी पड़ाव है पुरालेख, यानी वो जगहें, म्यूजियम, लाइब्रेरी, डेटाबेस, जहां हमारा दृश्य इतिहास सहेज कर रखा जाता है।
स्रोतों के अनुसार बॉयलान इन्हें सिर्फ जानकारी का भंडार नहीं मानती।
तो फिर क्या मानती हैं?
सिर्फ कलेक्शन नहीं है ये?
नहीं, वो इन्हें शक्तिशाली संस्थान मानती हैं, जो ये तय करते हैं कि अतीत को कैसे याद रखा जाए और वर्तमान को कैसे समझा जाए।
कैसे? ये चुनकर कि क्या सहेजा जाएगा और क्या नहीं।
बिल्कुल, और किसे किस तरह से वर्गीकृत किया जाएगा। ये फैसले तटस्थ नहीं होते, इनमें शक्ति का खेल शामिल होता है।
किसकी कहानी कही जाएगी, किसकी नहीं, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब आर्काइव भी पक्षपाती हो सकते हैं, इसीलिए शायद हाशिए पर पड़े समुदाय अपने खुद के आर्काइव बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी कहानियों को बचाने के लिए।
बिल्कुल, और डिजिटल युग में ये और भी पेचीदा हो गया है। गूगल इमेजेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये सब विशाल एल्गोरिदम से चलने वाले आर्काइव बन गए हैं।
हाँ, और ये कैसे तय कर रहे हैं कि हमें क्या दिखे और हमारी सामूहिक याददाश्त कैसे बने, ये आज का एक बड़ा सवाल है।
ये आर्काइव की भूमिका और उसके नियंत्रण के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
तो इन सभी बिंदुओं, दृष्टि, दृश्य, वस्तु, सामाजिक, पुरालेख से गुजरने के बाद बॉयलान के काम के कुछ मुख्य विषय या संदेश क्या उभर कर आते हैं?
हाँ, जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है, मुझे लगता है एक तो यही है कि दृश्य संस्कृति कोई प्राकृतिक चीज नहीं, बल्कि समाज द्वारा बनाई गई चीज है।
सुंदरता, सामान्यता, ये सब समय और संस्कृति के साथ बदलते हैं।
दूसरा, दृश्य माध्यम की शक्ति, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये सत्ता का एक रूप है जो हमारे रिश्तों और हमारी पहचान को गढ़ता है।
इसलिए किसका प्रतिनिधित्व कैसे होता है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है, ये छवियों की भूमिका का सबसे अहम पहलू है।
तीसरा, तकनीक का लगातार बदलता प्रभाव, कैमरा से लेकर एआई तक।
हाँ, नई तकनीकें लगातार हमारे देखने और दिखाने के तरीकों को बदल रही हैं, जिससे नियंत्रण और आज़ादी दोनों की नई संभावनाएं बन रही हैं।
चौथा, पहचान का सवाल, छवियां हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान बनाने में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, वे सिर्फ आईना नहीं हैं, वे निर्माता भी हैं।
और शायद सबसे जरूरी बात, जो बॉयलान के काम का केंद्रीय लक्ष्य लगता है, वो है आलोचनात्मक जुड़ाव की जरूरत।
हाँ, सिर्फ देखते रहना काफी नहीं है,
हमें सवाल पूछना सीखना होगा, छवियों के पीछे की राजनीति और शक्ति को समझना होगा। यही दृश्य साक्षरता है और यही हमें एक ज्यादा जागरूक और सक्रिय नागरिक बना सकती है।
इन स्रोतों में कुछ ऐसे विचार भी मिलते हैं जो बहुत गहरे हैं और याद रखने लायक हैं।
हाँ, जैसे कि ये कि दृश्य संस्कृति सिर्फ वो नहीं जो हम देखते हैं, बल्कि ये है कि हम कैसे देखते हैं।
और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, हमें कैसे देखा जाता है, ये सीधे सीधे शक्ति और रिश्तों की बात करता है।
बिल्कुल, और ये विचार कि हर छवि एक तर्क पेश करती है, दुनिया कैसी है और उसमें हमारी जगह क्या है, इस पर एक दावा।
मतलब कोई भी छवि मासूम नहीं होती, वो दुनिया को एक खास नजरिए से दिखाने की कोशिश करती है।
एक और महत्वपूर्ण बात दृश्य साक्षरता के लक्ष्य के बारे में है।
क्या?
कि दृश्य साक्षरता का मतलब छवियों का सही अर्थ निकालना नहीं, बल्कि ये समझना है कि छवियां अर्थ, आनंद और शक्ति पैदा करने के लिए काम कैसे करती हैं।
सही बात है, प्रक्रिया को समझना ज्यादा जरूरी है।
और आखिर में ये विचार कि इस क्षेत्र की असली ताकत इसकी असहमतियों में है, ये कोई सुलझा हुआ विषय नहीं है।
और यही बात इसे जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखती है, ये हमें लगातार सोचने और सवाल करने के लिए उकसाता है।
तो इन सब विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, इन्हें हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
साफ तौर पर मीडिया साक्षरता में, चाहे अखबार की तस्वीर हो या इंस्टाग्राम पोस्ट, हम सवाल पूछ सकते हैं, ये किसने बनाया, क्यों बनाया,
इसमें क्या दिखाया जा रहा है और क्या छुपाया जा रहा है।
बिल्कुल, और विज्ञापन देखते समय ये समझना कि विज्ञापन हमारी इच्छाओं को कैसे जगाते हैं
और किस तरह के जीवन को आदर्श बनाकर पेश करते हैं, ये हमें ज्यादा जागरूक उपभोक्ता बना सकता है।
सोशल मीडिया इस्तेमाल करते समय भी एल्गोरिदम हमें क्या दिखा रहा है, ऑनलाइन हमारी पहचान कैसे बन रही है,
फेक न्यूज या मैन्युपुलेटेड छवियां कैसे फैलती हैं, ये सब दृश्य संस्कृति के ही पहलू हैं।
यहाँ तक कि जब हम अपने शहर में घूमते हैं, पोस्टर, मूर्तियाँ, इमारतों का डिजाइन, ये सब भी हमें कुछ बता रहे होते हैं।
किसके इतिहास को याद किया जा रहा है, किसकी अनदेखी हो रही है, ये सब सवाल पूछना ही आलोचनात्मक जुड़ाव है, जो बॉयलैंड के काम का लक्ष्य है।
तो इस पूरी चर्चा से, जो आपके साझा किए गए स्रोतों पर आधारित थी, सबसे अहम सीख क्या मिलती है?
हाँ, क्या लगता है?
मेरे लिए शायद ये है कि आज के समाज में पूरी तरह से शामिल होने और एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए हमें छवियों को आलोचनात्मक नज़र से देखना सीखना ही होगा। कोई भी छवि या देखने का नज़रिया तटस्थ नहीं होता।
और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि इस तस्वीर का मतलब क्या है, बल्कि ये पूछना चाहिए कि ये तस्वीर मुझसे क्या करवाना चाह रही है।
हाँ, या ये दुनिया को देखने का मेरा तरीका कैसे बदल रही है।
बिल्कुल, ये सवाल हमें निष्क्रिय दर्शक से सक्रिय विचारक बनाते हैं। ये बॉयलैंड के काम का निचोड़ लगता है, छवियों की भूमिका को पहचानना और उनके विश्लेषण के लक्ष्य को समझना।
बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि देखना एक सीखी हुई कला है और इसमें हमेशा एक नज़रिया, एक पक्षपात शामिल हो सकता है। बॉयलैंड का काम हमें इसी के प्रति सचेत करता है और हमें सोचने के नए औजार देता है।
तो चलिए श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं जो बॉयलैंड की सोच से ही निकला है। अगली बार जब आप कोई तस्वीर, विज्ञापन, मीम या डेटाग्राफ देखें, तो एक पल रुककर सोचें, यह छवि आपसे क्या करवाना चाह रही है, यह दुनिया को देखने का आपका तरीका कैसे बदल रही है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।